आस्था उसे मुझसे नहीं छीन सकती। मैं उसे मरते हुए देखना चाहती हूँ। और पागलपन में डूबी संजना बार बार वही बातें दोहराती जा रही थी। और कुछ बच्चे जो कि कभी आस्था के दोस्त हुआ करते थे, वही सभी अब उस पर पत्थर फेंक कर मार रहे थे। कभी उसे पागल पागल कहकर चिढ़ा रहे थे, लेकिन संजना को तो जैसे किसी भी बात का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। मानो उसे ये सब कुछ अजीब सा पर अच्छा लगने लगा हो। उसके मुंह से केवल यही बातें लगातार निकल रही थीं। न तो वो बच्चों की चिल्लाहट का विरोध कर रही थी और न ही उनके पत्थर मारने का विरोध कर रही थी। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को डांट टपट कर वहां से भगा दिया था, और कुछ ने तरस खाकर उस पर कुछ खाना भी फेंक दिया था। किसी ने कपड़े दे दिए थे, लेकिन कोई भी उसे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसने हमेशा दूसरों के साथ गलत ही किया था, कभी किसी का साथ नहीं दिया था। फिलहाल संजना की सजा पूरी हो चुकी थी। फिलहाल आस्था के मन की उलझन देखकर अरमान ने आस्था को सीधा खड़ा किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला था, अगर आपको लग रहा है कि संजना सिंह के साथ गलत हुआ है, तो आप चाहें तो मैं उसे हमारे घर, हमारे परिवार का हिस्सा भी बना सकता हूं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। जैसे ही अचानक अरमान ने ये कहा, आस्था लाल आंखों से अरमान को देखने लगी थी और तुरंत ही अपनी तेज प्रतिक्रिया देते हुए उसने अरमान के पेट में हल्का सा घूंसा मारते हुए कहा, क्या कहा आपने? एक बात हमारे कान खोलकर सुन लीजिए मिस्टर सिंघानिया, हमें नहीं पता आप हमसे कितना प्यार करते हैं या कितना नहीं, लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपका पागलपन, आपका जुनून भले ही हमें लेकर कम हो गया हो, लेकिन शायद आपको एक बात नहीं पता, हमारा पागलपन, हमारा जुनून आपको लेकर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। खबरदार अगर आपने किसी और के बारे में सोचा भी तो। आप सोच भी नहीं सकते कि हम आपके साथ क्या से क्या कर सकते हैं, समझे आप? और आगे से किसी का भी नाम आपकी जुबान पर आया तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जैसे ही आस्था ने पूरे दबंग अंदाज में अरमान को धमकाया, अरमान को एकदम से हंसी आ गई थी और तुरंत ही उसने आस्था को कसकर गले से लगाकर उसे लेकर गोल गोल घूमने लगा था और बोला, ओहो मेरी डेविल क्वीन, वाकई में तो डर गया मैं। तुम्हारे अंदर ऐसा अंदाज भी है, ये आज से पहले मुझे पता ही नहीं था। हल्का सा किसी का नाम लेने पर मेरी बीवी को इतना गुस्सा आ जाएगा। तभी आस्था जल्दी से मुस्कुराकर बोली, सचमुच आगे से आपके मुंह से इस तरह की कोई बातें मैं सुनूं तो अच्छा नहीं होगा, समझे आप? जैसे ही आस्था ने एक बार फिर अरमान को धमकाया, अरमान जल्दी से कांपने की एक्टिंग करते हुए बोला, अरे ठीक है बस बस डर गया मैं। अरमान को खुद से डरता हुआ देखकर आस्था मुस्कुरा दी और जल्दी से उसके चौड़े सीने में अपना सिर छुपा लिया। तभी अचानक खिलखिलाकर हंसने की आवाज उनके कानों में गूंजी। अंश जोर जोर से ताली बजाकर हंस रहा था। ऐसा लग रहा था कि अपने माँ बाप की जीत की खुशी में और उनके एक होने की खुशी में वो भी अपनी नन्ही सी दुनिया में जश्न मना रहा हो। उसके छोटे छोटे निकले हुए दो दांत उसे और भी ज्यादा क्यूट बना रहे थे। उसे देखकर आस्था शर्माकर मुस्कुरा दी और फटाफट से जाकर अंश को अपनी बाहों में भर लिया। वहीं अरमान ने भी दोनों को एक साथ गले से लगा लिया था। तभी आस्था ने भारी सी आवाज में अंश और अरमान को चूमते हुए कहा, आप जानते हैं हमने तो जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि हमें आप दोनों से इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी। सच में अब हमें आपका जुनून और आपका पागलपन समझ में आ रहा है। आप जिस तरह हमें प्रोटेक्ट करते थे, अब वही फीलिंग हमारे दिल में भी आ चुकी है। अब हम आपके ऊपर किसी और के नजर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जानते हैं अरमान जी, अगर कोई लड़की आपको देखती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें जाकर उसकी आंखें ही फोड़ देनी चाहिए। हम आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं अरमान जी, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें आपसे इतना गहरा प्यार हो जाएगा। जैसे ही आस्था अपने मुंह से इस तरह की बातें कर रही थी, अरमान को उसकी बातें सुनकर काफी अच्छा लग रहा था, बल्कि एक बेहद ही खूबसूरत फीलिंग आ रही थी। वो जल्दी से आस्था के करीब आया और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा मैडम आस्था सिंघानिया, मेरे अंदर का पागलपन और जुनून तो आपने खत्म कर दिया, लेकिन आपके अंदर जो मेरे लिए जुनून और पागलपन पैदा हुआ है उसे कौन खत्म करेगा? हाँ देखिए, अब मैं किसी का मर्डर नहीं करना चाहता, मैं अपनी एक नॉर्मल और शांत जिंदगी अपने बेटे और बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ, लेकिन इस हालत में मैं आपका ये पागलपन और जुनून बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सुन रही हैं ना मेरी बात, तो मुझसे जुनून वाला प्यार मत कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार कीजिए, इतना प्यार कि हमारे बीच कोई भी कभी ना आ सके और हम अपनी छोटी सी जिंदगी हंसी खुशी के साथ गुजार सके। अरमान के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर आस्था सच में चौंक गई थी, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की लाइनें हमेशा आस्था ही बोला करती थी, लेकिन आज अरमान इस तरह की बातें कर रहा था और ये बात आस्था को बहुत अच्छी लगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, आप तो बदल चुके हैं और हम ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अब आप हमसे सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हैं, कोई जुनून वाली मोहब्बत नहीं। आस्था की बात सुनकर अरमान मुस्कुरा दिया और बोला, लेकिन एक बात बताओ मैडम सिंघानिया, आपके मुंह से आज इस तरह की बातें सुनकर दिल को बहुत अच्छा लग रहा है। भले ही मैं आपसे नॉर्मल प्यार करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस जुनून वाली मोहब्बत से प्यार करें, एकदम पागलपन वाला प्यार। मैं चाहता हूं कि आप भी उस फीलिंग को महसूस करें ताकि आपको मेरे जज्बात का एहसास हो सके। ये सुनकर आस्था हल्का सा शर्मा गई और अंश को गोद में लिए हुए अरमान के सीने से लगकर बोली, अरमान जी अब आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन हाँ ये सच है कि अब हमें आपसे जुनून वाली मोहब्बत हो गई है, और अगर ये फीलिंग इस दुनिया की सबसे वर्स्ट फीलिंग भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि हम आपको किस हद तक प्यार कर सकते हैं। अरमान के दिल की हालत तो अब और भी खुश हो गई थी। वो बोला, लगता है मेरी बीवी को मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है, लेकिन हमारे अंश बेटे को देखकर तो साफ पता चल रहा है कि उसका सोने का भी कोई इरादा नहीं है। लेकिन अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं अंश को थोड़ी देर के लिए नानी माँ के पास लेकर जा सकता हूँ? जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था हल्का सा शर्माते हुए उसके बटन से खेलते हुए बोली, आपको जैसा ठीक लगे अरमान जी, आप कर सकते हैं, भला हमने कब मना किया है। ये बात सुनकर अरमान का दिल खुशी से झूम उठा। आखिरकार उसकी बीवी ने खुलेआम उससे प्यार का इजहार किया था, वरना हमेशा तो वो शर्मा ही जाती थी। आस्था का ये बदला हुआ रूप अरमान के लिए एक अलग ही सुकून लेकर आया था। मुस्कुराते हुए उसने फटाफट अंश को गोद में लिया और सीधा नानी माँ के पास चला गया। वो बोला, नानी माँ थोड़ी देर आप अंश के साथ बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर अरमान तेजी से वापस अपने कमरे में आ गया। वहीं नानी माँ अरमान को इतनी हड़बड़ी में जाते देखकर सच में हैरान रह गईं और सोचने लगीं, आखिर दामाद जी को क्या हुआ है, इतनी जल्दी किस बात की थी? लेकिन उन्हें लगा कि जरूर कोई काम होगा, और वैसे भी जब तक राजवीर और सम्राट जिंदा थे उनकी जिंदगी में काम ही काम था। इधर अरमान जैसे ही अपने कमरे में आया, सबसे पहले उसने आस्था को दिल खोलकर प्यार करना शुरू कर दिया। और आस्था भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी अरमान को उतना ही खुलकर प्यार किया जितना वो कर सकती थी। अरमान की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं था, आखिरकार उसकी बीवी उसे दिल खोलकर अपने प्यार का इजहार जो कर रही थी।
फिलहाल वहीं दूसरी ओर इस वक्त आकाश मिनी हॉस्पिटल में रश्मि के साथ था। आखिरकार उसने एक पल के लिए भी रश्मि को अपने सीने से अलग नहीं किया था। बच्चों को ज्यादा देर तक वो गोद में नहीं ले पा रहा था, क्योंकि नानी माँ ने उसे सख्त मना करते हुए कहा था कि बच्चा बेहद कमजोर है और अगर इस तरह से उसे गोद में लिया जाएगा तो उसकी तबीयत बिगड़ने का खतरा है, इसीलिए आप उसे केवल दूर से ही प्यार करें जब तक वो कम से कम 8 से 10 दिन का नहीं हो जाता। फिलहाल आकाश के दिल के जज्बात पूरी तरह से बाहर आ रहे थे। आखिरकार वो मौत के मुंह से वापस आया था, वरना सम्राट के डाक विला से बाहर आ पाना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था। लेकिन अब वो सुरक्षित था और कहीं ना कहीं अपनी बीवी और बच्चों के साथ एकदम करीब बैठा हुआ था। रश्मि आकाश को देखकर बोली, क्या बात है, आपको आज ज्यादा ही प्यार आ रहा है। तभी आकाश ने तुरंत रश्मि को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, प्यार तो इतना है आपसे कि आप अंदाज़ा तक नहीं लगा सकती। फिलहाल आकाश के मुंह से इस तरह की प्यार भरी बातें सुनकर रश्मि पूरी तरह से खुश हो गई थी, क्योंकि हमेशा से रश्मि ही ज्यादा प्यार भरी बातें करती थी और आकाश बहुत कम इस तरह से अपने जज्बात जाहिर करता था। लेकिन आज तो आकाश पूरे दिल से खुलकर अपने प्यार का इजहार कर रहा था, जिससे रश्मि को बेहद अच्छा लग रहा था। वहीं आकाश ने रश्मि को बाहों में भरकर कहा, इतने खूबसूरत से गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिसेज मल्होत्रा। जैसे ही आकाश ने ये बात बड़े प्यार से कही, रश्मि भी हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखने लगी। वहीं दूसरी ओर अपने अपने पार्टनर के साथ सभी लोग अच्छी तरह से क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे थे। आखिरकार सभी को ऐसा लग रहा था मानो उन्हें नई जिंदगी मिली हो और अपनी इस नई जिंदगी की पहली रात को वो खुलकर जी रहे थे। फिलहाल वहीं तहखाने में राजवीर का इलाज कर रहे डॉक्टर और नर्स रात भर काम करते रहे थे। उन्होंने पूरी रात बिना रुके राजवीर और सम्राट का इलाज किया था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अरमान के लिए उन दोनों का जिंदा रहना कितना ज्यादा जरूरी है। अगली सुबह तक राजवीर को खून चढ़ाया गया था, जिससे उसकी हालत काफी हद तक स्थिर हो गई थी। डॉक्टर ने पूरी मेहनत की थी, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया था। कम से कम 2 से 3 दिन उसे होश में आने में लगने वाले थे। अविनाश और अबीर सिंह राठौर ये सोच रहे थे कि आखिरकार इस राजवीर और सम्राट की कहानी खत्म क्यों नहीं कर देते, क्योंकि जब तक वे दोनों जिंदा रहेंगे तब तक ना तो अविनाश वहां से जाने वाला था और ना ही अबीर सिंह राठौर। सभी लोग वहीं रुके हुए थे और बस सम्राट और राजवीर के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल अगली सुबह सभी लोग मुस्कुराते हुए हंसते खेलते चेहरे के साथ नीचे हॉल में आए। तभी दादाजी अभिमान जी को लेकर वहां पहुंचे। अभिमान जी ने आज कुर्ता पायजामा पहना हुआ था और उसके ऊपर उन्होंने शॉल डाली हुई थी, जिसमें वो काफी यंग लग रहे थे। वहीं आस्था जल्दी से आरती की थाली लेकर आई और अभिमान जी की आरती उतारते हुए बोली, अरे वाह पापा जी, आप तो एकदम न्यूली ग्रूम लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, अभिमान जी हल्का सा शर्माते हुए बोले थे, बेटा तुम्हारे दादाजी ने तो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती ये कपड़े पहना दिए, अब तुम ही बताओ इनमें मैं कहीं जाता हुआ अच्छा लगूंगा, मैं तो अपने नॉर्मल कपड़ों में ही ठीक था ना। ये सुनकर आस्था जल्दी से बोली, दादाजी ने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया पिताजी, और हाँ हम सब भी तो देखिए एकदम तैयार हैं, अब आप भी फटाफट से तैयार हो जाइए, आज हम सब एक साथ रायचंद विला में जाएंगे। ये सुनकर सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, वहीं अरमान या किसी को भी इसमें कोई एतराज नहीं था। तभी नानी माँ जल्दी से बोली, ठीक है बेटा, तब तक हम यहाँ पर वसुंधरा बेटी के आने की तैयारी करेंगे और तुम सब लोग जाओ। लेकिन तभी आस्था बोली, लेकिन नानी माँ आप भी चलिए ना, आपके बिना क्या मजा आएगा। तभी नानी माँ बोली थी, अरे बेटा रश्मि बेटी भी है और वो तो कहीं जा नहीं सकती, और घर पर किसी का रहना भी बहुत जरूरी है, ऐसा करो तुम लोग जाओ हम यहीं रुकते हैं। लेकिन तभी अचानक अरमान कुछ सोचकर बोला, आकाश सुमित साथ ही साथ मिस्टर राठौर और अविनाश घर पर ही रहेंगे, क्योंकि राजवीर और सम्राट यहाँ कैद हैं और ब्लैक डेविल किंग के आदमी न जाने कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है, इसलिए घर पर इन सबका होना बेहद जरूरी है, और किसी तरह के ढोल नगाड़े या शोर शराबे की भी कोई जरूरत नहीं है, जो भी स्वागत होगा सादगी से होगा। जैसे ही अरमान ने डाक आवाज में ये कहा, नानी माँ जल्दी से बोली, हाँ बेटा हम समझ गए, और बाहर का कोई भी आदमी हम यहाँ नहीं आने देंगे, पूरी सुरक्षा रहेगी। तभी अविनाश बोला, फिक्र ना करें मिस्टर सिन्हानिया, आप लोग जाइए हम तब तक यहीं हैं, और हमारे रहते यहाँ कोई नहीं आ पाएगा। कहीं ना कहीं अविनाश ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कही थी, फिलहाल आकाश का तो खुद जाने का इरादा नहीं था, आखिरकार उसकी बीवी और बच्चे भी यहीं थे, इसलिए आकाश और सुमित वहीं रुक गए थे। लेकिन राधिका तो पूरी तरह से तैयार खड़ी थी और बोली, तो फिर हम लोग चलते हैं और अंश और गुनगुन भी जाएगी, बहुत मजा आएगा। ये सुनकर सभी लड़कियां भी पूरी तैयारी के साथ तैयार हो गईं और वहां जाने के लिए उत्साहित दिखने लगी। आखिरकार अभी तक उन्होंने किसी की भी बारात अटेंड नहीं की थी, बारात में जाने का सुख क्या होता है उन्हें आज पहली बार एहसास हो रहा था, तो सभी काफी हद तक एक्साइट थीं। तभी ठीक उसी वक्त मारिया और टाइगर अपने बेटे के साथ वहां आकर खड़े हो गए। टाइगर ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर अरमान को गले से लगा लिया था। अचानक टाइगर के अरमान को गले से लगने पर क्या रिएक्ट करेगा अरमान, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों पर, सुनते रहेंगे तेरे इश्क में।